अब मैं उसे अपने और तुम्हारे दरमियान दूरी पैदा करने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है।
आसिया,
हाँ?
मेरी दवा का वक्त हो गया है, एक गिलास पानी ले आ जरा।
ठीक है, अभी लाती हूँ।
आप बैठे, मैं लाती हूँ।
कहो।
क्या कहूं?
वही बात जो तुम्हारे दिल में है।
मेरे दिल में कुछ भी नहीं है।
मतलब ये कहना चाहती हो कि इतने वर्षों तुम्हारे साथ रहने के बावजूद मैं ये नहीं समझ सकता कि तुम्हारे दिल में कोई बात है।
बस करो भूषण, खुदा के लिए बस करो, इस बार रेहाना को मुझसे जुदा न करना। तुमसे गुजारिश करती हूँ, मरियम की कसम, मुझे मेरी बेटी से अलग ना करना खुदा के लिए। ये लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। मुझे हाथ मुंह धोना है, कहाँ धो सकता हूं मैं?
बाथरूम उस तरफ है। मिली, मैं नहीं समझती थी ऐसे होंगे, कितने कमजोर हैं।
5 बरस पहले अटैक हुआ था, ब्रेन हेमरेज हो गया था, बस किसी तरह से बच गया।
तो इसीलिए इतने किस्म की गोलियां खाते हैं?
हाँ, और रोज बरोज कमजोर होते जा रहे हैं। पूछो, जो बात भी तुम्हारे दिल में है।
उनके पास क्या था कि उसकी वजह से आपने मुझे अकेला छोड़ दिया?
शांक,
बड़ी खुशी की बात है कि तुम ठीक हो गई हो। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द अपने काम करके बच्चों के पास वापस चल चलें। मैं जब आ रहा था तो मरियम और मानी ने बहुत ज्यादा ताकीद की थी कि मैं तुम्हें साथ में लेकर आऊं। वो तुमसे दूर नहीं रह सकते। तुम भी तो आज तक कभी उनसे इतने दिनों तक दूर नहीं रही हो।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम बेटा, ये लो नजर का है।
अच्छा शुक्रिया, खुदा कबूल करे।
खुदा तुम्हारी दादी की मगफरत करे, हर साल देख वही चढ़ाती थी। अरे बेटा, वो बूढ़ा कौन है?
वो हमारे एक दूर के रिश्तेदार हैं।
खुदा खैर करे। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है कि कहीं कोई बात ना हो जाए। बेटा तुम ख्याल रखना, बेटा कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
आप फिक्र ना करें, कुछ दिनों तक रहेंगे फिर चले जाएंगे।
रेहाना बेटा अपना ख्याल रखना, हर एक पे भरोसा ना करना।
ठीक है,
मुझसे भी कोई काम होगा तो मैं दुकान पे हूँ। कोई काम तो नहीं?
नहीं शुक्रिया, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। बाबा बहुत मजे का है, सच कह रही हूँ, बहुत जायकेदार है।
जवानी में तुम्हारी अम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी।
सिर्फ जवानी में?
अब भी बहुत अच्छा बनाती हो, अभी बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन उस वक्त मैं नया नया तुम्हारे हाथ का खाना खाता था तो बहुत अच्छा लगता था। जिला वतनी की तमाम सख्तियों को सिर्फ तुम्हारी अम्मी के हाथ के पके हुए लजीज खानों और इनकी मोहब्बतों के जरिए मैंने बिताया। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारी अम्मी के लिए एक आदत हूं, मोहब्बत नहीं। छोड़ो भी, तूबा से बात की?
किस बारे में?
अब भी पूछती हो किस बारे में? मेरे ख्याल में इस बार भी कुछ होने वाला नहीं है। तुम कभी नहीं बदलोगी आसिया, कभी नहीं।
तुम भी कभी बदलने वाले नहीं, इस बार भी हमेशा की तरह हो।
मुख्तलिफ है, इस बार मुख्तलिफ है। अब मौका नहीं बचा है आसिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर देर करोगी तो महमूद और तूबा एक सुई भी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ेंगे।
तुबा को कोई एतराज नहीं है।
20 साल से तुम यही कह रही हो। अगर तुबा चाहेंगी तब भी महमूद साहब उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इतने बरसों के दौरान उस रकम से बिजनेस किया है और बहुत ज्यादा कमाई की है। अगर तुबा को कोई एतराज नहीं है तो इतने बरसों के दौरान उसने तुम्हारा हिसाब किताब साफ क्यों नहीं किया?
अस्पताल का सारा खर्च तुबा और उसके शौहर ने दिया है, ये तुम जानते हो।
बड़ी जहमत की उन्होंने। तुम कितनी भोली हो। तुम्हारे अब्बा की मीरास इतनी ज्यादा है कि उससे वो अस्पताल और उसमें काम करने वाले तमाम लोगों को एक साथ खरीदा जा सकता है। समझ में आ रहा है तुम्हारे क्या कह रहा हूं मैं? और तुम हो के अस्पताल का मामूली सा खर्चा पाकर खुश हो रही हो। अजीब बात है। मुझे देखो, मैं तुम्हारा शौहर, तुम्हारे बच्चों का बाप, इस बीमारी के आलम में मुझे तुम्हारी और बच्चों की फिर खाई जा रही है कि अगर कल को मर जाऊं तो तुम लोगों का क्या होगा। और दूसरी तरफ इतना पैसा है, तुम्हारा अपना हिस्सा है, मेरे बच्चों का हक है उन लोगों के पास, और वो लोग ऐश कर रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। नहीं आसिया, नहीं। अगर तुम अपना हक छोड़ दोगी तो भी मैं तुम्हारा हक छोड़ने वाला नहीं हूं। इस बारे में फैसला करने के लिए आया हूँ।
तो इसीलिए तुमने उस बूढ़ी मक्कार औरत परी को उनके पास भेजा था?
और क्या, उनकी कमजोरी मेरे पास है। और क्या,
वो किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा मामला?
इतने बरसों के साथ के बावजूद भी वो आज भी वो मुझे चौंका देता है। क्या करूं?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
माफ कीजिएगा, हाजी महमूद साहब कहाँ हैं?
तहखाने में तशरीफ रखते हैं।
शुक्रिया, इजाजत।
तशरीफ ले जाइए।
और ये 8 और ये 2 10 और यहाँ पे ये 11 और ये मिलके हो गए 12 और इस सफे पे ये 6 के साथ ये पूरा हिसाब और ये 7वां इधर
مجھے قالینوں کا معاملہ کبھی بھی سمجھ میں نہیں آیا نہ اس کی بنائی سمجھ میں آئی اور نہ اس کی ڈیزائنیں کبھی میری سمجھ میں آئیں مجھے تو اچھے برے قالین کی تمیز بھی نہیں ہے یقین کرنے والی بات ہے
تمہیں جاننا بھی نہیں چاہیے تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم
کیوں نہیں تو کیا میں حاجی مرتضیٰ کا داماد نہیں ہوں ہاں اچھا مرحوم حاجی صاحب تو تم کو یاد ہی ہوں گے
شرم کرو ہوشنگ مرے ہوئے لوگوں کی برائی نہیں کرتے بری بات ہے
میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے بس یہ پوچھا ہے کہ میرے پیارے پھوپا تمہیں یاد ہیں یا نہیں تمہارے خسر کی بات کر رہا ہوں وہی جن کے تم نوکر تھے
ہم اب بھی ان کے نوکر ہیں ہم اپنی کمائی کھاتے ہیں زبانی دعوے نہیں کرتے اچھا خیر چھوڑو یہ بتاؤ کہ تم یہی بکواس کرنے کے لیے یہاں آئے تھے
آپس کی بات ہے ہاں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم قالین کی دکانوں میں نوکری کرنے والے راتوں رات مالدار بننے کے طریقے خوب جانتے ہو میرے خیال میں تم لوگ جب کہیں نوکری کے لیے جاتے ہوگے تو پہلے ضرور پتہ لگا لیتے ہوگے کہ مالک کی کچھ جوان لڑکیاں آئیں یا نہیں بڑے چالاک
جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے
کیا بات ہے ناراض کیوں ہو گئے کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں تم نے پہلے یہ کیا اور پھر اس آوارہ لڑکے رضا نے یہ کیا
بکواس بند کرو ہوشنگ اس گندی زبان سے اس مرحوم کا نام مت لے ٹھیک ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا
ٹھیک ہے قبول رضا کی بات چھوڑو تم اپنی کہو تمہاری حالت تو ماشاءاللہ کافی بہتر ہے بہت کما رہے ہو حاجی صاحب کی دکان میں کام کرتے ہو ان کے گھر میں رہتے ہو مرحوم کی میراث کو ہڑپ کر حاجی محمود صاحب ہو گئے ہو صحیح ہے نا
صحیح غلط کا فیصلہ تم خود کرو لیکن ایک بات ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے میں 2 بار بری طرح دیوالیہ ہو چکا ہوں کچھ اس طرح کہ اگر امام خمینی رفاعی ادارے نے مدد نہ کی ہوتی تو کبھی سنبھل نہیں سکتا تھا چھوڑو اب مطلب کی بات کرو کس لیے آئے ہو
اپنی بیوی کا حصہ لینے آیا ہوں پائی پائی لیے بغیر جانے والا نہیں ہوں یہاں سے